नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
नमस्कार आदाब श्रोताओं, मैं अंजलि आज खबर लेकर आई हूँ। 2017 में आतंकी घटनाओं से ज्यादा सड़क के गड्ढों के चलते लोगों ने गंवाई जान। देश में सड़क पर गड्ढों के चलते हुए हादसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2017 में इन गड्ढों के चलते 3,597 की मौत हुई, यानी हर दिन औसतन 10 लोगों को गड्ढों के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। 2016 की तुलना में यह आंकड़ा 50% ज्यादा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में देश में नक्सलवादी और आतंकवादी घटनाओं के चलते 803 लोगों की मौत हुई थी। इनमें आतंकवादी सुरक्षा कर्मी और आम नागरिक तीनों शामिल हैं। लेकिन सड़क पर गड्ढे होने की वजह से इसकी तुलना में कई गुना ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में गड्ढों के चलते सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश 987 लोगों की हुई, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 714 था। वहीं महाराष्ट्र में 726 लोगों को सड़क पर गड्ढे होने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। 2016 की तुलना में महाराष्ट्र में गड्ढों के चलते होने वाली मौतों का यह आंकड़ा 2 गुना है। 2016 में 329 लोगों की मौत गड्ढों के चलते हुए हादसों में हुई थी। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं के चलते हुई मौतों के आंकड़ों को सभी राज्यों ने केंद्र सरकार के साथ साझा किया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा खराब रिकॉर्ड हरियाणा और गुजरात का है। यहाँ 522 और 228 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली में साल 2017 में गड्ढों के चलते 8 लोगों की जान गई, जबकि साल 2016 में गड्ढों के चलते यहां एक भी मामला ऐसा नहीं था। सड़क पर गड्ढों के चलते होने वाली मौतों ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है। म्युनिसिपल बॉडीज और सड़क स्वामित्व वाले एजेंसियों में भ्रष्टाचार भी इन गड्ढों के होने की एक बड़ी वजह है। वहीं यातायात नियमों का पालन न करने का लोगों का रवैया और दोपहिया चालकों का हेलमेट उपयोग न करना भी इस हादसे को बढ़ावा देते हैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज मैं बात करने वाला हूं नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 4,32,000 भारतीयों को मिला है रोजगार। जी हां, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र ने 2017 में भारत में 47,000 नई नौकरियां उत्पन्न की हैं और 4,32,000 लोगों को रोजगार मिला है। यह जानकारी इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा हाल की ही एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में 10 मिलियन लोग नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काम करते हैं। मई 2018 तक 59 गीगावाट की संचयी क्षमता प्राप्त करने के लिए भारत ने 2017 में अक्षय ऊर्जा क्षमता के 12 GW स्थापित किए हैं। यह आंकड़े 2016 से 12% ऊपर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह प्रगति पेरिस जलवायु समझौते 2015 के तहत विश्व के देशों ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो प्रतिबद्धताएं दिखाई हैं और धीरे धीरे जो बदलाव हुए हैं उसकी वजह से हैं। सौर फोटोवोल्टिक उद्योग सभी नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है और दुनिया भर में 3.4 मिलियन लोगों को नौकरियां दे रहा है, जिसमें चीन में 2.2 मिलियन और भारत में 1,64,000 शामिल हैं।
शुक्रिया राजीव जी। और मैं मधु आज खबर लेके आई हूँ। बैंक डिजिटल सेवा करने के प्रयास में एटीएम और शाखाएं बंद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सब अपने फायदे के लिए है। पश्चिमी देशों में सभी बैंक नकदी मशीनों और शाखाओं को बंद कर रहे हैं। वे आपको अपने डिजिटल भुगतान और डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उद्देश्य लाभ को बढ़ावा देने के लिए लागत में कटौती करना है। शाखाओं को कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। उन्हें मानकीकृत स्वसेवा एप्स के द्वारा बदलना, वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधकों को सीधे ग्राहकों के साथ बातचीत करने और निगरानी करने की अनुमति देता है। यदि बैंक जानबूझकर गैर डिजिटल विकल्प चुनने के लिए कठिन बनाते हैं तो डिजिटल विकल्प चुनने की अधिक संभावना रहती है। इसी तरह वित्तीय संस्थान नकदी रहित समाज और डिजिटल बैंकिंग की ओर अग्रसर करने की कोशिश कर रहे हैं। वीजा और मास्टर कार्ड जैसी भुगतान कंपनियां डिजिटल भुगतान सेवाओं की मात्रा में वृद्धि करना चाहते हैं, जबकि बैंक लागत में कटौती करना चाहते हैं। डिजिटल सिस्टम सुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन वे अक्सर विफलता के केंद्रीय बिंदुओं के साथ आते हैं। यह बाहरी डेटा केंद्रों पर भरोसा नहीं करता है और रिमोट कंट्रोल या रिमोट मॉनिटरिंग के अधीन नहीं है। यही कारण है कि वित्तीय संस्थान और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। ट्रेजरी ने हाल ही में नई अर्थव्यवस्था में नकदी और डिजिटल भुगतान पर सार्वजनिक परामर्श किया, यह नोट करते हुए कि नकद अभी भी महत्वपूर्ण था। इसे अपराध और कर चोरी के साथ जोड़ता है, लेकिन डिजिटल भुगतान के नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करता है। हमें नकदी रहित समाज और हाइपर डिजिटल बैंकिंग प्राकृतिक प्रगति के बारे में कहानियों को स्वीकार करना बंद करना होगा।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।